नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। यूपीआई ने डिजिटल रूप से पैसों के लेन देन को आसान बना दिया है। अब तक देश में यूपीआई से भुगतान पर कोई चार्ज नहीं वसूला जाता है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यूपीआई से भुगतान पर चार्ज वसूलने के संकेत दिए थे, जिसके बाद वित्त मंत्रालय ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार का फिलहाल यूपीआई पर चार्ज लगाने का कोई इरादा नहीं है। वित्त मंत्रालय ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर लिखा, यूपीआई एक डिजिटल पब्लिक सर्विस है जिसका मकसद जनता की सुविधा और अर्थव्यवस्था लाभ है। यूपीआई सेवाओं के लिए कोई चार्ज लगाने का फिलहाल सरकार का कोई विचार नहीं है। लागत वसूली के लिए सर्विस प्रोवाइडर्स को अन्य माध्यमों का सहारा लेना होगा। वित्त मंत्रालय ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, सरकार ने पिछले साल डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की थी। इस वर्ष भी डिजिटल पेमेंट को अपनाने और भुगतान प्लेटफॉर्मों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने की घोषणा की है, जो किफ़ायती और उपयोगकर्ता के अनुकूल हैं। नॉर्वे भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव भागीदारी के तहत नॉर्वे का जलवायु निवेश कोष राजस्थान में 420 मेगावाट क्षमता के सौर बिजली संयंत्र में 49% हिस्सेदारी लेगा। नॉर्वे के दूतावास ने सोमवार को एक बयान में कहा कि नॉरफंड और केएलपी द्वारा प्रबंधित जलवायु निवेश कोष 280 करोड़ रुपए में थार सूर्या एक सौर ऊर्जा परियोजना में 49% हिस्सेदारी लेगा। केएलपी नॉर्वे की सबसे बड़ी पेंशन कंपनी है। राजस्थान में 420 मेगावाट क्षमता का सौर बिजली संयंत्र इटली की कंपनी एनएल ग्रीन पावर बना रही है। नॉर्वे के भारत में राजदूत हंस जेकब ने कहा, नॉर्वे और भारत वैश्विक ऊर्जा बदलाव में भागीदार हैं। नॉरफंड प्रबंधित जलवायु निवेश कोष के माध्यम से नॉर्वे भारत की ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ बिजली आपूर्ति में योगदान करते हुए अपनी जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के उपायों में वित्त पोषण की प्रतिबद्धताओं को पूरा कर रहा है। जलवायु निवेश कोष के लिए भारत प्राथमिकता वाला बाजार और वो अगले 5 साल में 10 अरब क्रोन का योगदान देगा। भारत ने सोमवार को एक विशेष सहायता कार्यक्रम के तहत श्रीलंका को 21,000 टन उर्वरक सौंपा। इस कदम से पड़ोसी देश के किसानों को मदद मिलेगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। हाल ही के महीनों में संकटग्रस्त श्रीलंका को भारत द्वारा दी गई इस तरह की ये दूसरी सहायता है। भारतीय उच्चायोग ने ट्वीट में कहा, दोस्ती और सहयोग के रिश्ते को आगे बढ़ाया गया। उच्चायुक्त ने भारत के विशेष समर्थन के तहत औपचारिक रूप से श्रीलंका के लोगों को 21,000 टन उर्वरक की आपूर्ति की है। इससे पहले पिछले महीने 44,000 टन की आपूर्ति की गई थी। ये आपूर्ति 2022 में भारत द्वारा कुल 4 अरब डॉलर की सहायता के तहत की गई। भारतीय उच्चायोग ने कहा, उर्वरक आपूर्ति से खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और श्रीलंका के किसानों को मदद मिलेगी। ये कदम भारत के साथ घनिष्ठ संबंधों और भारत तथा श्रीलंका के बीच आपसी विश्वास और सद्भावना को दर्शाता है। भारत ने मई में श्रीलंका को मौजूदा कृषि सत्र में किसी व्यवधान से बचने के लिए 65,000 टन यूरिया की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया था। श्रीलंका अभूतपूर्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है, जिसके कारण वहाँ ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। लग्जरी कार कंपनी मैकलारेन ऑटोमोटिव इस साल अक्टूबर में मुंबई में अपना पहला डीलरशिप केंद्र खोलने के साथ भारतीय बाजार में कदम रखेगी। मैकलारेन ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि भारतीय बाजार कंपनी का 41वां वैश्विक क्षेत्र होगा। बयान के अनुसार अक्टूबर में पहले डीलरशिप केंद्र का उद्घाटन कंपनी की वैश्विक विस्तार योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैकलारेन अपने ब्रिटेन के संयंत्र में तैयार कई तरह के सुपरकार बेचती है। बयान में कहा गया कि मुंबई में कंपनी का डीलरशिप केंद्र मैकलारेन की पूरी श्रृंखला की बिक्री बाद सेवाओं की पेशकश करेगा। देश की प्रमुख आवास वित्त कंपनी LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने अपनी PLR 0.50% बढ़ाकर 8% कर दी है। कंपनी ने सोमवार को एक बयान में यह जानकारी दी। PLR मानक ब्याज दर है जिससे LIC हाउसिंग फाइनेंस का आवास ऋण जुड़ा हुआ है। इस वृद्धि के साथ आवास ऋण पर ब्याज दर अब 8% से शुरू होगी। नई ब्याज दर सोमवार से प्रभाव में आ गई है। इससे पहले आवास ऋण पर ब्याज दर 7.50% से शुरू होती थी। LIC हाउसिंग फाइनेंस के प्रबंध निदेशक एवं CEO Y विश्वनाथ गौड़ ने बताया कि LIC HFL की ब्याज दरों में बढ़ोतरी बाजार में मौजूदा स्थिति के अनुरूप है। उन्होंने कहा, रिजर्व बैंक ने 5 अगस्त को मौद्रिक नीति समीक्षा में रेपो दर में 0.5% की वृद्धि की है। रेपो दर में बढ़ोतरी से EMI या आवास ऋण की अवधि में कुछ उतार चढ़ाव आया है। इसके बावजूद घरों की मांग मजबूत रहेगी। गौरतलब है कि RBI ने पिछले 3 मौद्रिक नीति समीक्षा में नीतिगत दर रेपो में 1.40% की बढ़ोतरी की है। रेपो दर में वृद्धि के बाद कई बैंकों ने भी ब्याज दरें बढ़ाई हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कमजोर रुख के बीच दिल्ली सर्राफा बाजार में सोमवार को बहुमूल्य धातुओं के भाव टूट गए। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी। सोने का भाव 315 रुपये टूटकर 51,679 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। इससे पिछले कारोबारी सत्र में सोना 51,994 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। चांदी भी 635 रुपये के नुकसान से 55,416 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव नुकसान के साथ $1,737 प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी $18.90 प्रति औंस पर स्थिर थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।